Hello learners, you have already learned to prepare the journal entries. Then we have posted it into different ledger accounts, and from there we have prepared trial balance. The balances of the ledger accounts we have posted in trial balance, and it was a statement showing the balances of various accounts. At that time you have identified certain accounts have debit balance and you have included that in the debit column of the trial balance, and some other accounts have credit balance and that you have included in the credit column of the trial balance. And okay, you will be thinking that after this everything is over relating to the finance to our accounting procedures. No, it is not like that. Why I am saying that? Because if you are studying, you would like to get know the result of your exam, so that you are how much competent you are, you will be able to identify only with that. Similarly, in the case of business organizations, we are preparing financial statements which will help us to identify the profit made by the organization. If it is not making profit also, we can identify with the help of financial statements. So we would like to teach you financial statements or final accounts in this session. So we have Anshul ma'am for us to explain that in detail. Over to you, ma'am.
Thank you, Siba ma'am. Hello learners. First of all, I would just like to start elaborate more on what Siba ma'am said, that when you get your report card, you have been studying the whole year. Aap pura saal padhai karte hain, uske baad saal ke ant mein aapko report card milta hai. Report card se aapko kya pata lagta hai? आपको पता लगता है कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही. आप उसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ. आप उसको अपने प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. सेम वे जब एक बिजनेस होता है, वो साल भर फंक्शनिंग करता है, तो जब उसके फाइनेंशियल ईयर का एंड आता है, तो जैसे आपके लिए आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, ऐसे ही बिजनेस के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. जैसे कि आपको अपने रिपोर्ट कार्ड से अपने मार्क्स पता लगते हैं, आप उसको कंपेयर करते हैं, ठीक उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिजनेस को पता लगता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस चीज़ों से उसको लॉस हो रहा है और फ्यूचर में उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो लॉस को मिनिमाइज कर सके. और इसके साथ ही बिजनेस कंपेयर कर सकता है अपने प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को इस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ, और दूसरी बिजनेस फर्म्स की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ भी बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता है. सो ये सब फायदे हैं या ये सब महत्व है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम कहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जो भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं, बाइंग ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो जब गुड्स को हम खरीदते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ये एक ट्रेडिंग प्रोसेस है. इसमें हमने क्या क्या किया, इससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ. इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं. ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स होंगे. इसके बाद में जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, जिसमें कि डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस जो हम बियर कर रहे हैं वो लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स रहती हैं. पीएल अकाउंट बनाने के बाद हमें जब नेट प्रॉफिट पता चलता है, उस नेट प्रॉफिट को लेकर हम बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट की इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्यों बनाते हैं, ये आपको धीरे धीरे जैसे हम करेंगे पता चलता जाएगा. लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं कि बैलेंस शीट आपको पोजीशन ऑफ बिजनेस बताती है ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितना कैश है, कितना फर्नीचर है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, सब कुछ.
सो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन, मैम हैज एक्सप्लेन यू क्लियरली you have to prepare in final accounts, trading account, profit and loss account and balance sheet. Trading account is a sub part of the profit and loss account, and in the trading account, ma'am has explained to you all expenses which are directly attributable to the purchase of goods, or all expenses which bring goods in saleable form are recorded in the trading account. That is, if product is finally produced, and for finally producing that output, what expenses are coming inside the factory, only those expenses are treated or considered in the trading account. Once again, in the trading account, expenses which bring goods in saleable form are considered. And why we are preparing trading account? To find gross profit or gross loss. That is, overall profit is identified with the help of the trading account. And this is brought down to the profit and loss account, and that will help you to identify net profit or net loss. And ma'am has mentioned you balance sheet, which will give you clear information about the assets and liabilities that a business has at the end of a particular accounting period. So this is a source of information. Balance sheet gives you information how much assets are there in that business, how much liabilities are there in business. Along with that, you can see the net profit and capital also. So we are moving in detail relating to the final accounts. Ma'am will explain that.
Now, first of all, we need to understand that what are the objectives of preparing financial statements. क्या उद्देश्य हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं. सबसे पहले तो हमें जानकारी होती है इससे कि हम जान पाएं बिजनेस ऑपरेशंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको, वॉट एवर परफॉर्मेंसेज द बिजनेस हैज़ डन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, वी कैन नो द स्टेटस ऑफ द बिजनेस. देन it is also a source of information for the outsiders and also for the insiders. Who are the insiders? अंदर के लोग जो कि business firm में काम कर रहे हैं, जो employees हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि firm की क्या position है, उसको कितना profit हुआ है, ताकि कि उनको जो bonus मिलना है या profit से जो उनका share है उसके बारे में भी उनको पता चल सके. उसके अलावा जो outsiders हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बिजनेस फर्म में, उनको एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के बारे में, जिससे कि वो तय कर पाते हैं कि उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. दूसरा कि जो हमारे बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी बिजनेस के बारे में एक जानकारी मिलती है कि क्या इस बिजनेस फर्म को लोन देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें लोन या एडवांसेस इस बिजनेस को देने हैं या नहीं देने हैं. उसके अलावा ये मैनेजर्स को, जो भी हमारे मैनेजरियल लेवल पीपल हैं, उनको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में. कैसे डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करती है? बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, कि पिछले साल रिजल्ट कैसा था, इस साल कैसा रहा है, ताकि कि जो कमी रही है उसको हम नोटिस में ला सकें और उसमें जो भी हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो भी हम इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं वो हम कर सकें. फिर नाउ वी आर कमिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग. कंपनी का जो भी स्टेटस है, जो भी उसका फ़ायदा है या जो भी उसका प्रेजेंट स्टेटस है, वो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है. उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कि कंपनी को नेट कितना प्रॉफिट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में. सो इससे हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में. ऑल्सो मैनेजमेंट कम्स टू नो कि क्या वीक एरियाज हैं, क्या लूप होल्स हैं, जहाँ से वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, उसको बूस्टअप कर सकें. It also tells the management about the previous performance of the company, like the performance of the company in the previous years. Now, for preparing trading account or profit and loss account, you need to know what is capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts and
रेवेन्यू रिसिप्ट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर का मतलब आप सब समझते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, और रिसिप्ट्स का मतलब जो हमारे पास में पैसा आ रहा है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो कि एक लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बिजनेस फर्म करती है, जैसे कि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या खर्चे करेंगे और लंबे समय के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कोई भी खर्चा किया, अगर कोई मशीनरी खरीदा या कोई बिजनेस के लिए लैंड खरीदा या फर्नीचर खरीदा, सो दैट ऑल दीज ऑल थिंग्स विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट इफ यू हैव स्पेंट मनी ऑन स्मॉल आइटम्स, दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स पेइंग सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स, व्हेन यू गेट अ बिग अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट और फ्रॉम एनी लोन, not loan but if you get any amount from sale of a big asset or something like that, then that will be your capital receipt. But revenue receipt again will correspond to that particular financial period, like if you got rent from the building or rent of the building if you have given, you got, or you got other some other receipts if you have got, discount if you have got, so that all things will come under revenue expenditure.
So at this point I would like to ask you an example. Amount spent on purchase of machine, whether you can include it as a capital expenditure, revenue expenditure or deferred revenue expenditure. I will mention you what is deferred revenue expenditure. Now you classify it as capital or revenue. Okay, amount spent on purchase of machine, it is of a capital expenditure. Why? Because amount invested on fixed assets can be included as a capital expenditure. Then expenditure incurred on repair of building, whether it is a capital expenditure or revenue expenditure. Yes, it is a revenue expenditure because repair is done for the building continuously or regularly, you have to do such repair work. So it is a revenue expenditure. For the maintenance of fixed assets, what all expenses are met, that can be included under revenue expenditure. At this point, I would like to mention you about deferred revenue expenditure. Usually, advertisement expenditures can be considered as a good example for deferred revenue expenditure. And these, the benefit of such expenses will be received by the business organization for many years. And such expenditures can be included as deferred revenue expenditure. Then we are moving to trading account preparation. Ma'am, explain that.
Okay, now coming to the trading account. Trading account we will prepare to know the gross profit of the firm. Jo bhi trading activities business kar raha hai. Trading activities kya hungi? Manufacturing and selling. Isse related activities jo bhi business kar raha hai, उसको उसमें जो खर्चा आ रहा है वो जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. सो टू अगेन आई रिपीट, सो टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड टू इंक्लूड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, और इसमें हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं. ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड सेलिंग एक्टिविटीज. So now for preparing a trading account, what do we need first? We need to find out the gross profit. And how do we find out the gross profit? Gross profit is net sales minus cost of goods sold. I repeat again, gross profit is net sales minus cost of goods sold. So pehle to hum ye jaan le ki net sales kya hongi. Net sales hamari hongi jo bhi humne सेल किया माइनस सेल्स रिटर्न, मतलब कि जो हमने सेल किया उसमें से अगर कुछ गुड्स वापस आ जाते हैं तो वो सेल्स रिटर्न होते हैं. तो हमारी नेट सेल्स क्या होंगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. फिर हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारा बिजनेस के पास ओपनिंग स्टॉक होगा. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो पहले से स्टॉक है बिजनेस के पास स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है.
तो जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस के पास, उसमें हम ऐड करेंगे जो हमने परचेजेस करी, और एंड अगेन वी विल ऐड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर कुछ भी कैरेज हुआ है परचेजेस पे, कैरेज ऑन परचेजेस इज ट्रांसपोर्टेशन मनी दैट वी हैव स्पेंट फॉर बाइंग द गुड्स, एंड टू दैट वी विल ऑल्सो ऐड द वेजेस. वेजेस इज द अमाउंट विच इज पेड टू द वर्कर्स, एंड फ्रॉम ऑल दिस वी विल सब्ट्रैक्ट द क्लोजिंग स्टॉक. आई रिपीट अगेन हाउ वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फर्स्ट वी विल टेक द ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमने किए हैं, प्लस परचेजेस, कैरेज इफ एनी स्पेंट ऑन परचेजेस, एंड वेजेस. और अगर और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द क्लोजिंग स्टॉक. तो ऐसा करने से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा. इसके बाद हम नेट सेल्स निकालेंगे. नेट सेल्स हमारी क्या होंगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. ये दोनों चीज़ें जब हमारी निकल आएंगी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
So, dear learners, ma'am has explained to you while preparing trading account, you have to identify the gross profit, and if sales is more, then you will definitely get gross profit. That is, more revenue is coming to the organization when compared with the cost of operation. Cost of goods sold means cost is less when compared with the sales revenue. Income is increasing and cost is less. That is why we got gross profit. So sales minus cost of goods sold. And when there is gross loss, how? When the cost is more and sales is less, then there will be gross loss. Cost of production is more, but the income or revenue that is coming from the sales activities are less. In such way, it can happen in sometimes gross loss also. Further, the organization can improve. So, trading activity results will give you either the gross profit or the gross loss. And ma'am has explained about the cost of goods sold preparation, how we will prepare that. Opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. That is the cost of goods sold. So, this formula you have to study. Then only you can prepare the gross profit with the help of the amount given in your questions if it is in the form of this type. That is, sales is given the question, cost of goods sold preparation ke liye, they must have given you all opening stock, closing stock, wages, factory, fuel, lighting, ice. They must be given direct expenses like carriage inward, etc. So, if these things are given, you have to calculate with the help of this formula. But still, we are going with the other format also for the preparation of the trading account. There is another format also that also we are going to consider. Okay, ma'am, please explain that also.
So, now we will prepare the format of a trading account. Before telling you the format of the trading account, I once again want to repeat the formula for the cost of goods sold. इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक. ये सब ऐड करने के बाद इसमें से आप ओपनिंग स्टॉक में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे. इससे आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप नेट सेल्स में से इसको माइनस कर देंगे. नेट सेल्स आपकी कैसे निकलेंगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. अगर आपकी सेल्स ज्यादा हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर सेल्स कम हैं तो क्या होगा? लॉस होगा, और उसको हम कहेंगे ग्रॉस लॉस. नाउ कमिंग टू द प्रोफॉर्मा ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ कैन वी प्रिपेयर द व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट. As you have already studied how to make a ledger account, same way you will be preparing account जिसमें कि left side पे आप debit balances लिखेंगे और credit side पे आप दूसरी entries करेंगे. So left side जो कि आपकी debit side होगी और right side आपकी credit side होगी. तो debit side में आप कैसे start करेंगे? सबसे पहले आप debit side में लिखेंगे opening stock, उसके बाद परचेजेस, परचेजेस में से आप क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न्स, क्योंकि आप नेट परचेजेस दिखाएंगे. फिर अगर आपके कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है, वेजेस है, फ्यूल एंड पावर पे जो आपने पैसे खर्च किए हैं, एक्साइज ड्यूटी है, और भी कोई टैक्सेस अगर पे किए हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री रेंट है, हीटिंग एंड लाइट है, फैक्ट्री का जो आपने रेंट पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, वर्क मैनेजर्स की जो सैलरी है, ये सब आप लिखेंगे डेबिट साइड पे. इसके बाद क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे सेल्स, और उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न. जो फाइनल अकाउंट अमाउंट आएगा वो आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में दो दो कॉलम्स बनाएंगे. लेफ्ट साइड में एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, फिर एक अमाउंट का. ऐसे ही राइट साइड में भी एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का और एक होगा अमाउंट का. सो पर्टिकुलर्स में जैसे आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर अमाउंट की जगह पे जो भी आपको अमाउंट की फिगर दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक इज 50,000 रुपीज, तो आप पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 50,000. फिर मान लीजिए आपने परचेजेस करी 20,000 की, जिसमें से 5,000 रुपये आपका परचेज रिटर्न है. सो 20,000 परचेज जो आप पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे परचेजेस 20,000 लेस, उसमें वहीं पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही लेस करेंगे 5,000, और जो आपका बैलेंस आएगा 15,000, ये अमाउंट आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ऐसे ही परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेडिंग पर्टिकुलर्स में लिख के अमाउंट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे. ऐसे ही हम हर एक के लिए करेंगे कि पर्टिकुलर्स में उसका नाम लिखेंगे और अमाउंट कॉलम में उस कितने पैसे हैं, कितना अमाउंट है वो लिखेंगे. सिमिलरली क्रेडिट साइड पे जब हम सेल्स लिखेंगे, तो जितनी भी हमारी सेल्स हुई हैं, सपोज 1,00,000 रुपीज की सेल्स हुई, तो 1,00,000 पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही लिख के उसमें से सेल्स रिटर्न वहीं पे माइनस करेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही, और जो फाइनल हमारा बैलेंस अमाउंट आएगा उसको ही हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे. जब हम दोनों तरफ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में हम अपने सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, और क्रेडिट साइड में हमारा जो भी सेल्स हुई हैं या क्लोजिंग स्टॉक है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. फिर हम देखेंगे, बैलेंस करेंगे दोनों को. अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है, इस ज़्यादा है, डेबिट साइड इज़ ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड, देन वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट. इफ़ द क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर, देन वी हैव ग्रॉस लॉस. एंड दिस लॉस और प्रॉफिट, वॉट एवर इज देयर, विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
सो मैम हैज़ एक्सप्लेन टू यू हाउ, what is the format of preparing the trading account. For that you have to write as heading trading account of what organization for the year ended 31st March 2015. Isa, what is the year ending? That also you have to write. You have to write the name of the organization, trading account of an organization for the year ending. What is the year ending of that particular question, you have to write. Then it is having a T form, that is left hand side debit side and right hand side credit side, with particulars column and amount column on both sides. And first item on the debit side, opening stock. Second item, usually purchases. Then all other direct expenses on the debit side. Credit side, first item sales, second or last item closing stock. Then you will balance it and then find out the gross profit or gross loss. Direct expenses, what is that and all, we will explain, because we have to explain what is meant by stock in detail. We are going to explain. Ma'am, please explain what is stock, because students will be confused about opening stock and closing stock. Please explain.
Yes,
that.
Yes, yes, Siva ma'am. Opening stock is that stock with which we start the business. Jiska bhi aap trading account bana rahe hain, ek financial account ka, financial year ka trading account bana rahe hain, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपके पास जो भी स्टॉक था शुरुआत में, दैट इज़ योर ओपनिंग स्टॉक. और जब वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो लास्ट डे जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, दैट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक. Okay, so I think I have explained what is opening stock and closing stock. Then I want to remind you once again about the format of the trading account, as well reminded by Siva ma'am also, that format of a trading account will be prepared in T-shape, and you have to first give the heading of the account, trading account of, the name of the firm you will write, and for the year ending you will write the date. Usually it is like 31st March 2017, say, because our financial year usually it starts from 1st April, 1st April to 31st March.
Ma'am, I would like to say at this point that when we have explained about this stock, in the case of manufacturing concern, we have mainly three types of stocks, like raw material, work in progress and finished goods.
Yes.
Both in the case of opening stock and closing stock, if it is a manufacturing concern, you have to consider this.
Yes.
And in the case of opening stock, when we are considering this, new business will not have any opening stock. That
yes.
also you have to consider.
Yes.
Then, in the case of closing stock, it is the value of the goods which remain unsold at the end of the particular period. Closing stock is the value of the goods that is not sold on the at the end of a particular year in which you are preparing the trading account. And closing stock is an item which is not generally available in the trial balance. If closing stock is adjusted against purchases, it will appear in the trial balance. When closing stock is shown in trial balance, it will not be included in the trading account. It will be shown only in the balance sheet. In the case of adjustments and all, this point you have to keep in mind in the case of preparation of the closing stock. So, closing stock is the last item in the credit side of the trading account, and it is a value of the goods which remain unsold at the end of a particular period. In the case of manufacturing concern, closing stock means raw materials, work in progress and finished goods, and it is an item which is not generally available in the trial balance. After preparing the trial balance, as in the form of an adjustment, usually they will mention, okay, closing stock worth rupees this much is there, then you will consider in the trading account, credit side, and in the balance sheet, asset side. But if it is given in the trial balance, it will not be shown in the trading account, it will be shown in the balance sheet. Ma'am, what is meant by purchases when we are considering the trading account? Because when we are considering trading account, how to write it or where to write it in the trading account, that also students should be clear.
Yes. In the trading account, we will write purchases just below the opening stock. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, टी शेप का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो जिसमें लेफ्ट साइड होगी, जो कि हमारी डेबिट साइड भी होती है, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक के नीचे हम लिखेंगे सेकेंड आइटम परचेजेस. परचेजेस पर्टिकुलर्स का जो कॉलम होगा उसके नीचे हम परचेजेस लिखेंगे, और उसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे.
So, dear learners, till this time we have discussed that opening stock is coming on the debit side of the trading account, closing stock as a last item on the credit side of the trading account, purchases as a second item on the debit side of the trading account, and sales on the credit side of the trading account, which includes both cash sales and credit sales, less returns. Because net sales and net purchases are given, so whenever net purchases and net sales are to be shown, means cash purchases plus credit purchases minus purchase returns. Similarly, in the case of sales also, cash sales plus credit sales minus sales returns. In that way, you have to calculate it in the inner column and then you have to bring it in the outer column. Ma'am, please explain the direct expenses and how it is coming in the trading account.
Direct expenses are ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं अपना टी शेप का ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें डेबिट साइड में, जो कि हमारी लेफ्ट साइड है, उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं. ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं पहले, फिर परचेजेस लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली परचेज ऑफ गुड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जो हम वेजेस पे करते हैं, जो फ्रेट है, जो हमारा कैरेज है, ये जो चीज़ें हम ये जो अमाउंट हमने पे किया जो डायरेक्टली हमारा परचेजेस से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिर हमने पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा डेबिट साइड पे, फिर हमने परचेजेस लिखी, फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमने लिखा अपना सेल्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। इस ये सब चीज़ें लिखने के बाद, सब आइटम्स लिखने के बाद, हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है या फिर क्रेडिट साइड ग्रेटर है, अगर हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है देन वी हैव ग्रॉस लॉस, अगर हमारी डेबिट साइड ग्रेटर है देन वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट।
So at this time, I would like to explain in direct expenses, we can include, ma'am has told you about wages, salaries, carriage, octroi, freight, etc. So wages and salaries, if it is given, where you will write? Yes, you have to look into the first word, wages, then you have to consider in the trading account. If in the question they have given salaries and wages, that is salaries can be attributed only to the profit and loss account, that is it is not a direct expense, so you have to consider that in the profit and loss account. So in the question wages and salaries are given means you have to consider that in the trading account. If salaries and wages, first word is salaries, so salaries and wages are given, then you have to consider that in the profit and loss account. Similarly, carriage inward, carriage paid for bringing the goods to the godown, that is the carriage inward. So if in the question they have mentioned that carriage, then you have to assume that it is carriage inward, and you have to write it only in the trading account, because carriage inward will come in the trading account and carriage outward, the carriage paid for taking the goods from the godown to the sales point, so that is carriage outward. So expenses relating to sales are coming in the profit and loss account, and that carriage outward you have to write in the profit and loss account. So carriage, if in the question only carriage is given, means where you will write? Yes, definitely you have to assume that it is carriage inward, and then you have to write the item in the trading account. So that much is enough, because after that you have to balance the trading account and you have to find out the gross profit or gross loss. Now it is time for us to move to the profit and loss account. And ma'am, please explain the format of profit and loss account as well as the items that are coming in the profit and loss account.
Yes. Thank you, Siba ma'am. So first of all, I would like to tell you again that why do we make a profit and loss account? आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता चला? ग्रॉस प्रॉफिट पता चला, बट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। हमको फाइंड करना है फर्म का नेट प्रॉफिट कितना हुआ। सो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिए सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो हुए होंगे ना, तो उनको भी हम दिखाएंगे कि हमने कोई रेंट पे किया या कोई कमीशन हमें मिली, कोई डिविडेंड मिला, तो ये सब चीज़ें जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसको भी हम कहेंगे कि चाहे ये हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, या डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये सब अकाउंट, ये सब जो हमने खर्चे किए हैं जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो पहले जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया था, बट अब हम जब पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि हम उसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी अकाउंट करेंगे। सो फॉर्मेट, कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन इट इज़ अ टी शेप अकाउंट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ योर डेबिट साइड, we record all the expenses, and the right hand side, which is your credit side, we record the whatever we have spent, whatever money we have spent, whatever our expenses are, sorry, whatever our incomes are. On the debit side we will write the expenses, and on the credit side we will write the incomes. Now, first of all, the first item on the debit side, again, it will be a T-shaped account having a column of particulars and amount, both on left side and on right side. So, debit side, the first item will be gross loss, if any. If we don't have gross loss, then we will start with other indirect expenses like salaries, rent, whatever we have paid, insurance premium if you have paid, any money on advertising, commission if you have paid, if you have allowed any discount, repairs and renewals amount, bad debts, establishment charges if you have paid, traveling expenses, bank charges, sales tax or VAT, depreciation on fixed assets, all these items we have to mention on the debit side of profit and loss account. Then, after writing all the expenses on the credit side, we will write the whatever revenue we have received from different sources. First of all, we will write the gross profit. Gross profit or gross loss will be the same which we have found in the trading account. We will write gross profit brought down on the credit side. Then we will write the discount received, the commission received, dividend received, whatever incomes we have received, interest on investment, rent received, all these items we will write down. Then we will compare, we total both the sides, we will compare. If the credit side is more, then it will be a loss. And if the debit side is more, then it will be net profit. We will write it as net profit or net loss transferred to capital account. It will be transferred to capital account, which will be mentioned there in the balance sheet. Okay.
So at this time, I will condense this profit and loss account once again. It is an extension of the trading account. So from the you are drawing continuously trading and profit and loss account as a heading. In that way also you can draw. And then second part, first half is the trading account and the second half is the profit and loss account. And the trading profit, that is the gross profit, is brought down from the trading account to the profit and loss account in the opposite side. Wherever you are getting gross profit or gross loss, bring it to the opposite side of this extension account, which is the profit and loss account. And there you have to write the gross profit brought down or gross loss brought down, in that way you are writing. Then all selling and distribution expenses are written in the profit and loss account. Which are the selling and distribution expenses? Carriage on sales, that is carriage outward. Advertisement expenses, selling expenses, salesman's commission, depreciation of fixed assets, etc. Then you have to consider office and administrative expenses also in the profit and loss account. Which are the office expenses? Rent paid, rates and taxes, postage, printing expenses, stationery expenses, legal charges relating to the office, audit fees done by the office, salaries paid to the office staff, etc. are the office and administrative expenses. Then financial expenses, interest on loan, interest on capital, etc. are also considered or debited in the profit and loss account. All expenses, that is indirect expenses, are coming in the profit and loss account. All direct expenses, that is relating to the production of the product, are coming in the trading account. So direct expenses in the trading account and indirect expenses in the profit and loss account. Direct expenses will be debited in the trading account, indirect expenses will be debited in the profit and loss account. Similarly, income. Indirect incomes you have to consider on the credit side of the profit and loss account. Usually, rent received, commission received, discount received, dividend received, etc. are the incomes that can come on the credit side of the profit and loss account. So, these are indirect incomes, not direct incomes. Direct income, sales. As a result of sales, you are getting revenue for increasing the production for increasing the profit or for improving the production process. So those are direct expenses, that direct income. Direct incomes are coming on the credit side of the trading account, and indirect income on the credit side of the profit and loss account. So after preparing these things, you have to find out the balance of this account, which can be the net profit. If the balance is coming on the debit side of the profit and loss account, it is net profit. And there you have to write in the particulars column, net profit transferred to capital account. And on the credit side, if you are receiving the balance, then that is net loss transferred to, there you have to write in the particulars column, net loss transferred to capital account. And that is, you, this business is not functioning properly, that is why you have received a loss. In that way, you have to mention clearly in the profit and loss account. So, as a result of the preparation of the profit and loss account, what you have identified, you are able to identify the net profit or net loss of the business. So, if a question is coming for you, why you are preparing the profit and loss account, you have to give the answer like this. After preparing the profit and loss account, you will be able to know the net profit or net loss of the business. Similarly, net profit of 1 year can be compared with the net profit of many years, different years. Different expenses which are taken in the profit and loss account in 1 year can be compared with the expenses incurred in the previous years, so that you can control all these expenses. So, I think you got some idea relating to the trading account and profit and loss account in this session. Now, we are briefing a little bit relating to the preparation of the balance sheet also. So, balance sheet is a statement showing the assets and liabilities on a particular date. So, ma'am, please explain balance sheet in detail.
The balance sheet of a business, of any business firm, tells you about the financial position of the business for that financial year, and it is prepared at the end of the financial year on a particular day. For example, if you are preparing a balance sheet, the format will be like this. Means you need to write that balance sheet for name of the firm, and then for the year ending, you need to write the date also, for the year ending 31st March 2017. So for preparing the balance sheet, you need to write, again it is a T form, form of a T form account. In the left hand side you write liabilities, and on the right hand side you write assets. There is a column of liabilities, then amount, and then again assets, and then amount. Starting from the liabilities, what are the liabilities of the business? We need to write that on the left hand side. Bank overdraft, outstanding expenses, the bills which are payable, sundry creditors, loans, capital. And to the capital, you will add profit. Which profit? जो आपका net profit है, जो आपने निकाला था trading PL से, उसको आप इसमें add करेंगे. You will add it to the capital and you will subtract the drawings from it. Then on the right hand side, you will write cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, investments, bills receivable, sundry debtors, closing stock, investments, furniture, plant and machinery, land and building, and goodwill. What I mean to say is that in the balance sheet, जो आप बनाएंगे, उसमें दो sides होंगी, liability side left side में होंगी और asset side right side में होगी. So जो भी business की liabilities हैं, उसको आप liabilities column में mention करेंगे, और जो भी business के assets हैं, वो आप asset side में mention करेंगे. बिजनेस के एसेट्स, जो भी बिजनेस के पास, जैसे बिजनेस के जो भी फर्नीचर है, लैंड है, जो भी बिजनेस के पास ईयर एंड में कैश बचा है, चाहे वो कैश इन हैंड हो, चाहे कैश एट बैंक हो, या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं. सिमिलरली जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो हमारा कहाँ आएगा, लायबिलिटीज साइड में आएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, वो एक लोन है जो हमें बैंक को
पे करना है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें पे करना है, हमारी लायबिलिटीज़ हैं जो बिल्स पेबल हैं वो भी हमें पे करने हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसा देना है, लोन है जो हमें वापस करना है. कैपिटल विथ प्रॉफिट एंड सब्ट्रैक्टेड ड्रॉइंग्स फ्रॉम इट विल ऑल्सो बी शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस विल बी प्रोफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट. वॉट यू नीड टू डू इज रिवाइज ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मेक द परफॉर्मा एटलीस्ट राइट द आइटम्स इन ईच एंड एवरी अकाउंट. Whatever items, you just close your book, take a copy and try to write items, as many items as you can write. Try to prepare the proforma of trading account, proforma of profit and loss account and proforma of balance sheet. और जितने भी items आपको याद आएँ, आपको लगे कि ये trading account में आएंगे, इनको वहाँ पर लिखें. फिर जो अभी आपको लगे PL account में आएंगे, उनको PL में mention करें. और जो भी balance sheet में आएंगे, उनको balance sheet में mention करें. और देखिए कि आपको कितने हेडिंग, कितने हेड्स आपको याद रहते हैं. और फिर अपनी बुक खोल के उनको देखिए, उनको मिलाने की कोशिश करिए और जो भी रह गया है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए.
सो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच शोज एसेट्स दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड लायबिलिटीज दैट आर ओव्ड बाय द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट. सो इट्स हेडिंग शुड बी इन दिस वे, बैलेंस शीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एट ए पर्टिकुलर डेट. ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स विच ऑर्गेनाइजेशन एज एट दैट पर्टिकुलर डेट. एंड इट इज नॉट एन अकाउंट, balance sheet is not an account. It has two sides. One is the liability side and other side is the asset side. And balance sheet is prepared to measure the correct financial position of a business. And it is a, it helps in systematic presentation of what the business owns and what it owes. So financial position is available at a glance with the help of the balance sheet. And on the liability side, you have to identify which are the liabilities like bills payable, creditors, loan, etc. And that you have to write on the liability side of the balance sheet with the amount in the amount column. First column is the liability, second column is the amount, third column is the asset and fourth column is the amount. In the asset side, you have to read the question properly and find out which are the assets that are given in the question. And then you have to take assets like cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, short-term investment or investment, bills receivable, debtors, closing stock, etc. as assets. And include that in the asset side with the amount in the amount column of the asset side. Then, I didn't mention anything about capital, which you have to consider or write on the liability side inner column. And along with that, you have to add if there is net profit in the inner column. And if there is net loss, you have to deduct it from the capital. And if there is drawings, you have to deduct it from the capital. And then the net amount will be written in the outer column as the capital amount. Then you are supposed to get the two columns, that is the asset amount column and liability amount column, equal or same amount. Then only you can assess that your accounting procedures are correct. So dear learners, in this session we have considered or we have studied trading account, profit and loss account and balance sheet.